Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Aur adrishta phalatmak jo sanchit tha, वो जब भोगने के लिए उद्भूत होता है तो प्रारब्ध बनता है. इनमें से शंकराचार्य जी ने जैसे समझाया उपदेश पंचक में, प्राकर्मा प्रविलाप्यताम चितिवलान, प्राकर्मा प्रविलाप्यताम चितिवलान, विवेक और विचार के माध्यम से प्राकर्म संचित कर्म. प्राकर्म का मतलब संचित कर्म. ज्ञान के बल से, चिति बल से संचित कर्म को तुम नाश करो. प्रविलाप्यता, उसका विलय कर दो. नाप्युत्तर ही श्लिष्यताम, कर्म करो लेकिन किए हुए कर्म में कर्माशक्ति और फलाशक्ति छोड़कर नाप्युत्तरे श्लेष्यता. श्लेषण माने आसक्ति. कर्म में जो आसक्ति होती है वह पुनः संचय का कारण बनता है, और कर्म में आसक्ति नहीं बनी तो संचय का कारण नहीं बनता है. तो विचार के द्वारा, अकर्ता भाव के द्वारा, कर्तव्य बुद्धि से करके कर्माशक्ति और फलाशक्ति का त्याग पूर्वक कर्म करोगे तो संचित कर्म भी खत्म हो जाएगा, संचित भी नहीं बनेगा. नाप्युत्तर श्लिष्यता. रही बात प्रारब्ध की, बात है बेटा, प्राकर्मस्तु यह भुज्यता, प्रारब्धस्तु यह भुज्यता. प्रारब्ध कर्म तो तुमको भी भोगना पड़ेगा, मुझे भी भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ेगा. प्रारब्ध कर्म भोगादेव क्षया. ज्ञान के द्वारा संचित कर्म नाश करो, असंगता के द्वारा क्रियमाण कर्म होने न दो, और प्रारब्ध कर्म प्रसन्नता पूर्वक भोगो. वो भोगे बिना छुटकारा नहीं है. शिष्य ने कहा, महाराज प्रारब्ध कर्म अच्छे कर्म होंगे तो वह प्रसन्नता पूर्वक भोगेंगे, और बुरे कर्म होंगे तो प्रसन्नता पूर्वक कैसे भोगा जाएगा. खराब कर्म फल देने के लिए आएंगे तो प्रसन्नता पूर्वक कैसे भोगा जाए महाराज. बोले भोगना तो पड़ेगा बेटा. बोले नहीं, इसको अन्यथा करें, बिना भोगे ही नष्ट कर दें तो क्या अर्ज है. क्योंकि कोई भोगना नहीं चाहता है, जबरदस्ती कोई भोगना है, बिना भोगे उसको छोड़ देते. नहीं तो पुरुषार्थ की क्या बात है. हम पुरुषार्थ करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे, साहस करेंगे, हिम्मत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उद्योग करेंगे, और कहेंगे पुरुषार्थ माने प्रारब्ध कर्म को हम नहीं भोगेंगे. किसी भी हालत में मर जाएंगे परंतु प्रारब्ध कर्म नहीं भोगेंगे, अन्यथा कर सकते. गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा भाई, प्रारब्ध कर्म एक ऐसा कर्म होता है, तुम्हारे हर पुरुषार्थ फेल हो जाता है उस समय. प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर हर पुरुषार्थ फेल हो जाता है, असफल होता है. नहीं गुरु जी, हट करने लग गया. तो गुरु जी ने कहा कि अच्छी बात है, तो क्यों जिद करता है. मैं तेरे 24 घंटे का प्रारब्ध को देखता हूं और मैं तुझे बता देता हूं 24 घंटे में तुझे तेरे प्रारब्ध ये बन रहे हैं, तीव्र फल देने के लिए आ रहे हैं, वो मंद और मध्यम भी न होकर तीव्र बनने वाले हैं. मैं तुझे बता देता हूं और तू उसको टाल सके तो टाल ले. जब किसी पुरुषार्थ से, किसी हिम्मत से, किसी प्रयत्न से, चाहे संकल्प से हो चाहे क्रिया से हो, उसको टाल सके तो टाल. बोले मैं करके दिखाता हूं महाराज, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, यही तो पुरुषार्थ है. प्रारब्ध को भी अन्यथा कर सके वही तो पुरुषार्थ है. प्रारब्ध के अधीन बैठ गए तो फिर पुरुषार्थ किस काम का, प्रश्न करते हैं व्यक्ति। गुरुजी ने कहा कि अच्छा, बोलिए गुरुजी मेरा क्या प्रारब्ध है, मुझे आगामी 24 घंटे के अंदर क्या भोगना है। गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, मैंने देखा तेरा प्रारब्ध 24 घंटे के अंदर, आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक बढ़िया मालपुआ, खीर, आमरस, पूरी है, और क्या क्या है, कोई बोलो और क्या क्या है होगा, फजी तो आमरस बने तो गुजराती में फजी तो बनता ही है, है? क्या क्या है, बस खाओ, पूरी, श्रीखंड, दूध पाक, ये बढ़िया है, है? ढोकला, जलेबी, हाँ आहा, याद करो भाई तुम लोग क्या क्या खाना है, तुमको मिलने वाला नहीं है, जितना याद कर लो। गुरुजी ने कहा कि ये सब बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा तुमको 24 घंटे के अंदर, तेरा प्रारब्ध है खाना पड़ेगा, खाने को मिलेगा, और तू हट करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तो देखा मुझे न खाकर, कौन मूर्ख होगा जो है इस प्रकार का खाने की चीज प्राप्त हो और ना बोले। लेकिन उसने कहा कि ठीक है गुरुजी, 24 घंटे की बात है ना, उसके बाद तो खा सकता हूं ना। बोले हां 24 घंटा, तो 24 घंटा मैं नहीं खाऊंगा, रोक दूंगा, नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर खाना ही पड़ेगा, तो कुछ भी कर ले खाए बिना तो छुटकारा नहीं मिलने वाला है, तेरा प्रारब्ध मंद और मध्यम न होकर तीव्र होगा, और जब तीव्र हो जाएगा तब तेरे को भोगना ही पड़ेगा बेटा। तो गुरु जी के सामने संकल्प कर ली, ये कल सुबह तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मरेंगे नहीं। अभी पेपर पड़ा था आज, केदारनाथ में 5 दिन तक पीने को पानी और खाने को कुछ नहीं मिला, तो एक बाई ने जंगल के जो पत्ते थे वो पत्ते पुत्ते चबा चुबो कर गुजारा किया है, पेपर में आया था। और एक कोई जड़ी गांव वालों ने दिखा दिया, वो उसको उखाड़ लिया, फिर उसे के पूंछ पांच करके उसके जड़ था जो कुछ लता थी, उसी के जड़ को चबा लिया उसने, उसी के पत्ते चबा ली, तो मरी नहीं, उसी से प्राण की रक्षा हुई। अरे भाई वो जड़, वो पत्ते, वो खाकर जब पशु अपने प्राण की रक्षा करते हैं तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी आदत बिगड़ गई है ना हलवा और श्रीखंड खाते खाते, तुम्हारी आदत बिगड़ गई है। बचपन से तुमको वो खिलाना शुरू किया होता तो तुम मरते नहीं भाई, उसी से जीते, लेकिन आदत बिगड़ी है। तो वो कहती है 5 दिन तक उसी से जिए, अभी आई तो पत्रकार ने पूछा होगा भाई 5 दिन तक क्या खाए, क्या पिया, कैसे बैठे, अब पानी पीने नदी में पूरा गदला पानी है, पानी स्वच्छ है ही नहीं, बेचारा क्या करें। उसने कहा 24 घंटा, हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूं नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि अच्छा जाओ, तुम जीत गए तो हम मान गए भाई। तो घर गया, दिन भर कहा नहीं, कल सुबह का कहानी था, प्रसंग था वो, कल सुबह 24 घंटा तुमको ये भोग नहीं होगा। रात को जब सोया तो मन में संकल्प किया कि कल सुबह उठूंगा तो मुख में कुछ डालूंगा ही नहीं, 24 घंटे की बात है, गुरु से प्रतिज्ञा की है, सो गया। सुबह जब उठा तो सुबह ही उसकी माता, बहनें, भाभियां, पत्नी सब जल्दी उठकर घर की सफाई करने लगे, पूजा की तैयारी करने लगे, और कुछ बहुएं पकवान पकाने लगी, कोई क्या कहते हैं दूध पाक पकाने लग गए, और कोई जलेबी पकाने लग गए, कोई हलवा पकाने लग गए, कोई मालपुआ पकाने लग गए, कुछ आम के निचोड़ने लग गए आम को रस निकालने के लिए। सुबह सुबह देखता है ये क्या हो रहा है, बोले तुझे पता नहीं है कल बट सावित्री पूनम है ना, कल ही है ना, कल ही, हाँ तुझे पता नहीं है, व्रत है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होती है। सिंधी लोग पूर्णिमा नहीं कहते, सत्यनारायण ही बोलते हैं। हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं ना, हम लोग उस तिथि को नाम पूर्णिमा बोलते हैं, लेकिन सिंधी लोग पूर्णिमा नहीं बोलते, सत्यनारायण। पूर्णिमा का नाम ही सत्यनारायण है। हाँ, क्योंकि पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा होती है। संक्रांति को और पूर्णिमा को, दो तिथि को सत्यनारायण की पूजा विशेष करनी चाहिए, करने वाले को। हाँ, संक्रांत और पूर्णिमा। संक्रांत माने सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जिस दिन संक्रमण करते हैं उसको संक्रांत बोलते हैं। सूर्य 12 राशि में संक्रमण करने के कारण साल में 12 संक्रांत होते हैं। बैसाखी एक संक्रांत है। बैसाखी आप लोग सुना है ना, पंजाबी लोग बैसाखी को मनाते हैं, उनका नया साल है बैसाखी। साल का पहले महीने का पहला दिन संक्रांत। और नेपालियों का भी वही संक्रांत, पहले साल का पहला दिन। बंगालियों का भी, बंगाली, नेपाली और पंजाबी, ये लोग संक्रांत से महीना मानते हैं। पूनम के परेवा प्रतिपदा से, मारवाड़ी लोग, हिंदी के लोग प्रतिपदा से महीना मानते हैं, और गुजराती लोग अमावस्या के बाद के प्रतिपदा से महीना मानते हैं, और पंजाबी, बंगाली, नेपाली लोग संक्रांत से महीना मानते हैं। तो पूर्णिमा था तो सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया घर वालों ने। पकवान शुरू हो गया, उसने कहा कि गुरुजी ने को कहा जो है वो लक्षण तो मिल रहा है, पकवान तो पक रहे घर में, लेकिन कुछ भी हो मैं खाऊंगा नहीं, प्रतिज्ञा किया है मैंने, नहीं खाया। उधर सब हो गया, पंडित जी आ गए, पूजा शुरू हो गई, सब उत्सव हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, हा? सगे संबंधी इष्ट मित्र सब आ गए हैं। कहां गया वो, पूजा समाप्त हो गया, उसको प्रसाद के लिए तो बुलाओ। उसको कहा घर वाले सब ने, कहां गया वो, प्रसाद के लिए बुलाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा। सब लोगों ने कहा क्या बात है, तू नालायक, सत्यनारायण के प्रसाद भी नहीं खाऊंगा बोलता है, मना नहीं किया जाता है सत्यनारायण के प्रसाद, कथा नहीं सुनी है, प्रसाद न खाने का फल क्या मिल गया, तू खा, कुछ भी होगा कल सुबह खाऊंगा, रख दो, मैं आज नहीं खाऊंगा, 24 घंटे की बात है। क्यों, मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसा भी कहीं प्रतिज्ञा होता है प्रसाद ही न खाने की, खा। बोले मैं नहीं खाऊंगा। तो सब लोगों को तो हड़का दिया, लेकिन जब उसके मित्र, उसके दोस्त, यार दोस्त आए, वे सब मालपुआ खाने लगे, ये सब खाने लगे, तो बोले तू भी खा। बोले नहीं खाएंगे भाई। बोले कैसे नहीं खाएगा, प्रसाद नहीं खाएगा, नास्तिक कहीं का, हम तेरे को खिलाएंगे, खिलाकर छोड़ेंगे। भाग गए हो, घर से भाग गया, कहां गया पता ही नहीं चला, गायब हो गए हो। अब मन ही मन विचार करने लगा, फिर घर में जाऊंगा, वह हाथ पांव पकड़ पकड़ के मुख में डाल देंगे, 24 घंटे की बात है, 12 घंटा निकल चुका है, अब कल सुबह है, रात भर की बात है, कहीं छुप के बैठ जाता हूं जंगल में, कल सुबह चला जाऊंगा, गुरु जी को कहूंगा देखो हमने हिम्मत किया, साहस की, जो प्रारब्ध भोगना था उसको भी बिना भोगे टाल दिया। समय निकलने के बाद प्रारब्ध भी काम नहीं करता है, वो डेट एक्सपायर हो जाता है प्रारब्ध का। दवाई होता है कि नहीं, डेट एक्सपायरेट, तो एक्सपायर डेट हो गया तो दवाई भी काम नहीं करती, इसलिए प्रारब्ध भी 24 घंटे का गुरु जी ने डेट दिया है, 24 घंटे निकल गया तो प्रारब्ध अन्यथा हो गई, निकल गया, खत्म हो गया, तो 24 घंटे की बात है, 12 घंटा निकल चुका है, 12 घंटे की बात है, क्या करें। तो जंगल में गया, वहीं बैठा, जंगल में घर ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर में गया कहीं मैं सोया हूं उस समय में, हाथ पांव दबाकर बांधकर कोई मुख में जबरदस्ती डाल सकता है, घर में ही नहीं जाऊंगा, बस जंगल में बैठ गया। जब चारों तरफ से अंधेरा घेरने लगा, सूर्यास्त हो गए, तो जंगल के जब जानवर कराने लग गए, बाघ उधर, शेर उधर, भालू का आवाज आ रहा है, उधर शेर का भालू आ रहा है, उधर गिदड़ कराने लग गए, डरने लगा, है कहीं है चारों तरफ से पशु आकर मुझे खा न डालें, इसलिए यहां बैठना ठीक नहीं, क्या करें। तो वहीं एक बड़ा सा पिपल का पेड़ था, उसी में चढ़ गया है। तो सोचा कि चलो रात भर यहीं पेड़ में बिताता हूं, कल सुबह उतर के जाऊंगा, पहले गुरु को कहूंगा ये प्रारब्ध को मैंने निष्फल कर दिया, फिर उसके बाद घर जाके नहा धो के कल का वो सब हलवा पूरी खा लूंगा, उसमें क्या है? समय निकल जाने के बाद खाया हुआ प्रारब्ध नहीं होता है, उसका अर्थ ये परिभाषा थी। अब पेड़ में चढ़ के बैठ गया, संयोग से उसी गांव में किसी घर में कोई बीमार हो गया, कोई महिला बीमार हो गई, उसका पति बड़ा परेशान हो गया, दवाई ला कर दे रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, इधर उधर। तो किसी ओझा को बुला लिया और दिखाया उसने, तांत्रिक ओझा ने देखा, तुमको फलानी जगह का एक भूत लगा है, वो भूत को कुछ खिला दो तो ये ठीक हो जाएगी। बोले क्या खिलाना है वो भूत को? बोले हलवा पूरी श्रीखंड रस ये सब पका पुका के सायं सूर्य अस्त होते ही फलाने जगह कोई पिपल का पेड़ है, वहीं वो भूत पिपल के पेड़ के नीचे बैठा है, तुम्हारी पत्नी पिपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने थूका था, वही भूत लग गया था थूकने से। है उन्होंने कोई बहाना तो चाहिए कि नहीं भूत लगने के लिए? हमको बचपन में कहा करते थे पेड़ के नीचे कभी पेशाब नहीं करना, क्योंकि पेड़ के नीचे देवता लोग बैठते हैं, भूत प्रेत भी बैठते हैं, तुम पेशाब करोगे तो वो नाराज हो जाएंगे और तुमको बीमार होना पड़ेगा, कष्ट होगा। समझाया करते थे वो हमको, आजकल कौन समझाता है? ये शिक्षा कहां गई? तुम्हारे उच्च शिक्षा के सामने ये संस्कारित शिक्षा गई कहां? खत्म हो गए। तो उसने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी वहां गई, पिपल के पेड़ के नीचे थूका था, वहां जो भूत बैठा था वो लग गया, इसलिए औषधि काम नहीं करेगी, उस भूत को कुछ दे दाकर ठीक करो तब फिर औषधि काम करेगी। तो क्या करें? तो बोले ये सब ले जाओ, ठीक शाम के समय सूर्य अस्त होते ही ले जाकर पिपल के पेड़ के नीचे दिया जला लेना और वो पकवान रख देना, बस भूत छोड़ देगा तुमको। बस उसने भी पकवान बना ली और ले जाके एक तप पत्तल में सजा के लेके पेड़ के नीचे ले जाकर सूर्य अस्त के बाद अंधेरे में ले जाके रख के आ गया। तो वो पेड़ के नीचे बैठा था, नीचे से वासना आ गई मालपुआ के, हलवा के, श्रीखंड के, पकवान के। ये क्या बात है, ये जंगल में इसकी वासना कहां से आ रही है? मेरे घर की पकवान की वासना तो नहीं है, कुछ भी हो मैं नीचे उतरूंगा ही नहीं, क्योंकि उसने देखा वो पेड़ से देख रहा है ना ये सब रखा है। बोले कुछ भी हो, भूख तो लगी है लेकिन कुछ भी हो कल सुबह तक मैं उतरूंगा ही नहीं, बैठा रहा वहीं। इतनी में वो तो चला गया पत्तल में, सब रात रुक के चला गया वो। इतने में उसी गांव में कुछ किसी के घर में चोरी हो गई, चार पांच डाकू जो है पहुंच गए, डाका डाला और चोरी करके आए, रात मध्य रात हो चुका था, उसी चबूतरे में बैठकर भागवंडा करने लग गए। कौन? चोर लोग। तो भागवंडा करने लगे, बढ़िया आज तो भगवान की कृपा हुई है बहुत, चोरों के ऊपर भी कृपा होती हो, हाँ आज तो भगवान की बड़ी कृपा हुई है, क्या सुंदर माल मिल गया, क्या बढ़िया है, कभी भी इस तरह का माल नहीं मिला था। लेकिन एक कहने लगा, हाँ ठीक कह रहे हो, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, लेकिन अब तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है भाई, आज सुबह से मैं खाया नहीं हूं। इसी समय में बढ़िया गरम गरम बढ़िया भोजन भी मिल जाता तो क्या कहना था, माल तो मिला था ही था, भोजन भी मिल जाता और आनंद आता, लेकिन करें क्या, अब इस जंगल में भोजन कहां से मिलेगा, होटल वगैरह पे सब बंद हो गए हैं, रात तो भूखा ही गुजारा करना पड़ेगा। इतनी में एक ने देखा तो उस पत्तल में बढ़िया रखा हुआ भोजन, अरे भगवान की कृपा है, जब ईश्वर की कृपा होती है तो देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है। कहा जाता है वो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, जब परमात्मा देता है किसी को छप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार कर लेता है वापस। है? आज तो देखो माल भी खूब मिल रहा है और खाने को भी मिल गया, ऐसे जंगल में कल्पना ही नहीं थी ईश्वर की क्या कृपा है। इतने में दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अरे सावधान, क्योंकि शायद किसी को पता चल गया है कि हम लोग चोरी करते हैं, इसी चबूतरे में आकर भागवंडा करते हैं, हमको मारने के लिए किसी ने ये भोजन लाकर रखा है, इसमें जहर डाला होगा, खाना नहीं चाहिए। नहीं खाना भाई, नहीं तो जान चली जाएगी, अनर्थ होगा। चौथे ने कहा कि अरे यदि ऐसा है तो वह व्यक्ति यहीं कहीं छुपा होगा, यदि किसी ने यहां जहर डाला होगा वो यहीं कहीं छुपा होगा, हमारे ये खाएंगे, भोजन खाएंगे, मरेंगे और लूटा हुआ संपत्ति सब लेके जाने के लिए यहीं कहीं छुपा होगा, पता लगाओ किधर है। तो ऊपर देखा तो ऊपर बैठा ही था, है? देखो हमारा अनुमान ठीक निकला, वही बैठा है, देख लो वहां ऊपर। हे नीचे उतर। बोले नहीं बाबा, मैंने वो रखा भी नहीं है, मुझे उससे कोई संबंध नहीं, मैं अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यहां बैठा हूं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। बोले आता है कि नहीं नीचे? चला नीचे, क्योंकि अब तो उसको मारे बिना उपाय नहीं है। तो भी नहीं आया, तो एक उसमें से जो पहलवान था वो चढ़ गया और पांग पकड़ के, टांग पकड़ के खींचा, तो नीचे आना पड़ा कि नहीं, वो लाचार होकर नीचे आया। तो उन चोरों ने कहा कि तू खा पहले। बोले भाई हम नहीं खाएंगे, इसी के लिए तो इतना पापड़ बेल रहे हैं, आज सुबह से मैं भूखा हूं, कल सुबह 8 बजे तक छोड़ दो बाबा मेरी प्रतिज्ञा, हम कुछ नहीं जानते, खा, मरेगा तो पहले तू मरेगा। बोले नहीं महाराज छोड़ो, कुछ भी नहीं। जब उसने नहीं खाया तो चार चोर मिले और पकड़े और मारे डंडा, मारा लात, मारे गुस्सा, खाता है कि नहीं, मार मारे तो अब बेचारा करे क्या है, खाना पड़ा कि नहीं। चार ने उसके हाथ पकड़ ली और एक ने मुख में जबरदस्ती डाला वो भोजन, थोड़ी देर में देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, मरा नहीं। जहर होता तब न मरता, जहर तो है, ए इसमें तो जहर तो नहीं है भाई, मरा नहीं है, इसको ज्यादा नहीं खिला होगा, बाकी तो हमको भूख लग रही है, हम खाते हैं। तो वो लोग खा गए कुछ और, उसको खूब मारा, खूब कुटाई की उसकी, ऐसा कुटाई की कि वो मर, क्योंकि जिंदा छोड़ना तो ठीक नहीं था। अब उन लोगों ने सोचा कि इसने देख लिया, पता लगा लिया, हमको पहचान भी लिया, अब इसको जिंदा छोड़ना तो ठीक नहीं है, ऐसा मारो कि मर जाए, खत्म, प्रमाण ही नष्ट हो जाए। खूब मारा, वो बेहोश हो गया, ऐसा हो गया मर गया। उन चोरों को ऐसा लगा कि मर गया, तो जो चोरी किया हुआ संपत्ति था ले लेके वो लोग तो भाग गए। अब वो तो वहीं पेड़ के नीचे पड़ा था, है, प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी। सुबह जब हुआ, सूर्य उदय हुए, पक्षी वगैरह कराने लगे, तो आंख खुली तो बड़ा मुश्किल से शरीर दुख रहा था, हाथ पांव, धीरे धीरे किसी प्रकार से वह सबसे पहले कहां पहुंचा होगा पता है, गुरु के पास पहुंचा। वो क्या हुआ बेटा, तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हुई? बोले महाराज मैं मान गया, ये प्रारब्ध के सामने किसी की कुछ नहीं चल सकती है, हैं? प्रारब्ध जो भोगना होता है वो भोगना ही पड़ता है। प्रसन्नता खुशी से घर का पकवान खाया होता, सबके मित्रों के साथ हंसते हुए आनंद में खाता, श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रसाद खाता, तो प्रारब्ध भी क्षय होता, पुण्य भी प्राप्त होता और आनंद का अनुभव भी वो अनुभव करता। लेकिन अनाहक हठ किया, मैं प्रारब्ध को जीतूंगा, परंतु जीत तो सका नहीं। अब प्रारब्ध भोगा कि नहीं, रोते हुए मार खा के भी, प्रारब्ध जब भोगाता है तो मार मार के भोगाता है, है? ये उदाहरण है, दृष्टांत महात्मा लोग दिया करते हैं। तो प्रारब्धस्तु ये भुज्यताम, तो यहां साहस की बात आ रही है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भगवान, किं ब्रूमस्तव साहसम पशुपते, कस्यास्ति शंभो भवत् धैर्यम चेदृश आत्मना स्थितिरियम चान्यै कथम लभ्यते। आपकी स्थिति जरा भी विचलित नहीं हुई है,